ओम शांति। तो जो बाइबल की सीरीज चालू की थी उसका आज अंतिम भाग, तो 3 अध्याय हमने लिए थे। पहला था 5वां अध्याय मैथ्यू से, जिसमें 5th में 48, 6th में 34 और 7th में 29, ऐसे टोटल 111 ये महावाक्य है बाइबल के, और जिसकी हमने ज्ञान के आधार से विवेचना की थी। आज 21 से लेकर तो 29 तक के अंतिम जीसस के महावाक्य जो उसने अपने शिष्यों को सुनाए उस एक पहाड़ी पर खड़े रहकर, तो उस पहाड़ी पर खड़े रहकर उसने जो सुनाया, और शिव बाबा ने आबू पर्वत पर खड़े रहकर जो सुनाया, उन दोनों में क्या समानताएं थी, क्या अंतर था, उसके विषय में हम देख रहे थे कुछ दिनों से। तो आज आगे का, और आज का ये जो है 21वां बहुत बहुत प्रसिद्ध है, और इसको कई क्लासेस में भी सुनाया गया है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं जो केवल कहता है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। कह तो रहे मेरा बाबा नारे लगा रहे, परंतु वो जो कहता है वो नहीं कर रहे। उसकी जो श्रीमत है, उसकी जो आज्ञा है, उसकी सिखाई हुई जो मर्यादाएं है, उसके कहे हुए जो वाक्य है, उसको फॉलो नहीं कर रहे। बाबा ने आज की साकार मूल्य में कहा है, मैं तुम्हें नई नई पॉइंट्स देता हूं, पुरानी पॉइंट्स काम नहीं आएगी। वही ये बातें तुमको बताता हूं, इसलिए नई नई पॉइंट्स नोट करते रहो। जैसे वो डॉक्टर और वकील कैसे नए नए पॉइंट्स नोट करते, पुरानी काम नहीं आती है, आउटडेटेड वर्शंस। बाबा की पॉइंट्स तो वैसे काल बाह्य कभी होती नहीं है, पर भगवान खुद ही कह रहा है जो कालों का काल है, जो पुराना है उसको भूल जाओ, पुरानी पॉइंट्स, नई नई पॉइंट्स नोट करो। और एक जबरदस्त टाइटल दिया है आज की मुरली में, तुम ज्ञान के स्पीकर हो। तुम कौन हो? ज्ञान के स्पीकर हो। तो तुमको तो भाषण दो, विचार करो। विचार सागर मंथन करने के लिए क्या चाहिए? ना, आज की मुरली से याद करने के लिए एकांत चाहिए। विचार सागर मंथन के लिए क्या चाहिए आज की मुरली में? शांति। आज की मुरली में दो जगह दो अलग अलग लाइन आई है। एक तो तुम्हें याद करना है तो उसके लिए एकांत चाहिए, अगर विचार सागर मंथन करना है तो शांति चाहिए। भीड़ भाड़ में नहीं हो सकता, दिन भर में नहीं, धंधा धोरी है, शांति चाहिए। तो केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होते। हाँ, वो भी एक प्रकार की याद है, जो बाबा कहते हैं मुख से बाबा 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 निकलता रहे सारे दिन भर, वो भी याद का ही रूप है, परंतु केवल वो तगिया कलाम ना बन जाए, वो आदत सी ना बन जाए कि बस वो कहते रहे कहते रहे कहते रहे। फिर भी ठीक है, किसी ना किसी रीति से जुड़े तो है, परंतु एक कदम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों की आदत है एक कदम आगे बढ़ना, फिर एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, और 10 साल के बाद वहीं के वहीं है। रात भर नाव खेते रहे, रात भर चलाते रहे नैया, चलाते रहे नैया, और इतने खुश हो रहे वो सारे मित्र जो शराब पीकर चले गए तालाब में, और सुबह जब जागे तो पता नहीं उनको लगा हम कहां पहुंचे होंगे। देखते हैं तो वही है, क्योंकि लंगर तो खोला ही नहीं था। ब्राह्मणों की भी ऐसी दशा है कुछ कुछ की। तो तुमको नई नई पॉइंट्स में देता हूं, कोई ये पॉइंट देता हूं, पुरानी बात पॉइंट्स काम नहीं आएगी। नई पॉइंट्स को धारण करो, भाषण में यूज करो, प्रयोग करो, फिर सोचो कि कौन सी बातें नहीं बताई, ये बातें बताते होते तो शायद तीर लग जाता, सोचो बाद में। देखो भगवान कैसी अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। तो जो मुझसे हे प्रभु कहता है, पर मैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यदि स्वर्ग के राज्य में आना है, उच्च पद पाना है, तो केवल मैं हे प्रभु कहने से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, जो मेरे पिता की इच्छा है, जो उसके श्रीमत है, जो उसकी आज्ञाएं है, जो उसके डिक्टेट्स, कमांडमेंट्स, ऑर्डिनेंस, फरमान, जो उसने सिखाई हुई मर्यादा है, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, वो सब को जो फॉलो करता है वही स्वर्ग के राज्य में आएगा। केवल कहने का सौदा नहीं है, ये करने का सौदा है। करके दिखाओ, ये सोचने का वक्त नहीं, अब धारणा करो। सोच बहुत लिया, अभी सीधा धारणा करो डायरेक्ट। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध वचन है कि केवल हे प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। ये भक्ति मार्ग है, यहां तो धारणाएं करनी होती है। जो बाप सिखा रहा है वो करना होता है। याद, आज की मुरली में कहा है केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ज्ञान का डिपार्टमेंट छोटा है, योग का डिपार्टमेंट बड़ा है। और जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानी है वो योगी भी है। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानी अच्छा है जिसके पास, वो याद में भी अच्छा है। याद से याद मिलेगी। तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको, तुम नहीं करो तो मैं भी नहीं करूंगा, शर्त है। करंट से करंट मिलेगी। कशिश तो तब होगी जब तुम याद करोगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? ये वो लोग हैं जो कह रहा है कि ऐसे मुझसे ये लोग कहेंगे, जो केवल ऊपर ऊपर दिखावे वाले थे, आडंबर वाले थे, कि हमने हे प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां की, तेरे नाम पर हमने इविल सोल्स को निकाला आत्माओं से, तेरे नाम पर हमने बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य किए। तो वो क्या कहता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा क्या कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या कहूंगा? एंड देन विल आई प्रोफेस अन टू देम, आई नेवर न्यू यू, डिपार्ट फ्रॉम मी, ई दैट वर्क इनिक्विटी, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, जो कुकर्म करने वाले हैं, मेरे पास नहीं आओ, मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम कौन हो, ऐसा कहेगा वो। क्योंकि ये कौन लोग हैं? जो उसके नाम पर आडंबर रचने वाले। और ईसाई धर्म में यही हुआ, या तो सभी धर्म में यही हुआ। वहां जो शुरुआत में जो लोग आए और जिन्होंने जो कुछ सिखाया, बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको बिजनेस बनाया। पहले माल इधर लाओ फिर उधर एंट्री मिलेगी। ठेकेदार खड़े हो गए, अपनी दुकानें चालू कर दी, खड़ी कर दी बहुत सारी दुकानें। तुमको वाया जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते तुम, पहले इधर फिर उधर। तो ये हर धर्म में हुआ है। तो वो उसके लिए भी चेतावनी दे रहा है कि ऐसे जो है, जो केवल दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, ढोंग रचते हैं वो, और मेरे नाम पर लोगों को ठगते हैं, वो कहता है मैं उनसे कहूंगा कि क्या कहूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि तुमको कभी मैंने जाना ही नहीं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कितना अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। मेरी बातें जो सुनता है, मेरी श्रीमत को जो मानता है, वो किसके जैसा है? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी चली, तूफान आई, बाढ़ आई, परंतु उसका घर नहीं हिला। और जो मेरी बातों को नहीं मानता है, केवल सुनता है, उसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर बनाया। जब बाढ़ आई, आंधी आई, और उसका घर विनाश हो गया, तबाह हो गया। Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken them unto a wise man who built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded on the rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doth not shall be likened unto the foolish man who built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the wind blew and beat upon the house, and it fell, and a great was the fall of it. तो केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जो ऐसा करता है, अर्थात ज्ञान को क्या बना देना है? ऐसा एक घर जो चट्टान पर खड़ा है, इतना शक्तिशाली स्वयं को बना देना है, क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत हलचल होने वाली है। इतनी हलचल कि शायद बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े ज्ञानी भी हिल जाए, इतनी हलचल होगी। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि एक हलचल राष्ट्रीय तल पर होती है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। छोटी सी बात होती है परंतु इतनी बड़ी कर दी जाती है, वो इतनी बड़ी कर दी जाती है, एक देश का मीडिया और दूसरे देश का मीडिया, देश देश का मीडिया कहां से कहां हो जाती है, और इसमें कोई भी अछूता नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। तो हलचल तो बहुत आने वाली है। एक हम अलग अलग प्रकार की हलचल सुनाते, एक हलचल है मीडिया की हलचल, एडिशन, धर्म सत्ता हिलेगी, राज्य सत्ता हिलेगी, और मीडिया हिलाने वाला मीडिया क्योंकि लेखक की जो कलम होती है, रिपोर्टर की, जर्नलिस्ट की, दुनिया बदल देती है। वो जो लिखता है उसमें बड़ा पावर होता है, बड़ा बल होता है जो वो लिखता है तो सब हिलेगा। इसके लिए क्या करना है? इतना सुंदर उदाहरण दिया है, घर कहां बनाना है? चट्टान पर घर बनाना है, मजबूत बन जाना है, स्वयं को भी फौलाद बना देना है, क्योंकि यह हलचल तो होगी, सब तरफ से हलचल होगी, सब तरफ से, ऐसा एक भी स्थान नहीं रहेगा जहां से हलचल नहीं होगी, सारी चीजें हिलाने की कोशिश करेगी, और ऐसी अवस्था में हमें अडोल रहना है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई, क्योंकि ये उपदेश कब सिखा रहा है? वो द्वापर की शुरुआत में, तब लोगों ने ऐसी बातें कभी सीखी नहीं थी, सुनी नहीं थी उनके शास्त्रों में, और ये वेस्टर्न के धर्म है, इधर के नहीं है, पूर्व के नहीं है, पाश्चात्य के, वहां के लोगों ने ऐसी बातें कभी सीखी नहीं थी। वहां तो परस्पर द्वंद्व था, परस्पर नफरत थी, उनके बीच में प्रेम का संदेश दे रहा है, वहां लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतावले रहते थे, वो ये उनके बीच में ये संदेश दे रहा है। एंड ही टॉट देम एज वन हैविंग अथॉरिटी एंड नॉट एज द स्क्राइब्स, ये लास्ट वाक्य है, क्योंकि वह शास्त्रियों के संतु अधिकारी का था, लोगों को आज ये जो बोल रहे, बोल में एक्टी है, बोल रहा है जैसे बाकी के स्क्राइब्स थे, अर्थात लिखने वाले, या फिर प्रीस्ट बोल रहा है, ये कुछ और। इसके लिए उसके शब्दों में उनको क्या दिखा? अथॉरिटी दिखी। इसके लिए वो न चाहते हुए भी मानना पड़ा उनको, क्योंकि पावर जो थी वो कुछ अलग प्रकार की पावर थी। तो दो तीन बातें यहां पर थी। सबसे पहला तो ये सौदा कौन सा है? दिल का, मुख का नहीं। तो यहां केवल मुख से काम नहीं चलेगा, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, जो हम बोल रहे हैं वो करके दिखाना पड़ेगा। कथनी और करनी समान होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो लोग कौन है? कथनी और करनी जिनकी समान नहीं है, 69 की मुरली, खौफनाक, खतरनाक, क्या कहा था बाबा ने, उनके लिए खौफनाक लोग है वो, जो बोलते कुछ और है करते कुछ और है, सोचते कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ और, और बाद में वापस बोलते कुछ और जो नहीं किया बाद में कहेंगे हमने बोला ही नहीं और भूल भी जाते हैं, ऐसा सब संसार में है। तो दिल का सौदा है, तो दिल से निकलना, अर्थात दिल से उसने जो जो कहा, और उसका सबसे वो जो कहता है वो कौन सी बात है, उसकी मुरली, मुरली की बातों का चिंतन करना, अध्ययन करना, मनन करना, एकांत में जाना, याद को बढ़ाना, बहुत सारी बातें हैं। आज तो बाबा ने और एक बात कह दी सकाश की, करंट देना है दूसरी आत्माओं को, कोई बीमार है, कोई कोई तकलीफ में अनन्य, तो रात को जागो, जाग जाग कर उसको सकाश दो, रात को जाग जाग कर उसको मदद करो, रहम दिल बनो, वरदान में भी कहा रहम। तो ये बहुत सारे काम करने हैं, और जिस दिन के मुरली में जो बातें आई उसी दिन करना है। सबसे बेस्ट चीज जो है आज की मुरली में यह है, कहा ना पुराने पॉइंट्स भूल जाओ, कुछ काम नहीं आएगी काल भाई अब जब आज मैं जो तुमको नई बातें बताता हूं, घुइये घुइये बातें बताता हूं, वो सुनो, उस पर चिंतन करो। एक जगह मुरली में कहा आज, देवताएं देही अभिमानी होते हैं क्या कि नहीं होते? देही अभिमानी होते हैं कि नहीं होते? तो इसके ऊपर चिंतन करना आज, और मुरली में पढ़ना क्या लिखा है होते हैं कि नहीं होते हैं देही अभिमानी देवता है, वो जो भी है मुरली को पढ़ना एक बार और उसमें देखना क्या कहा कि देवताएं देही अभिमानी है या देवताएं देही अभिमानी नहीं है। तो नई नई बातें जो मुरली में आती है उसी दिन धारण करनी है, उसी दिन उसको प्रैक्टिस करना है, उसी दिन उसको कार्य में लाना है। माया के साथ भी सामना है, माया बहुत विघ्न डालती है, क्योंकि माया के जब बनते हैं तो बाप को छोड़ना पड़ता है, और बाप का बनना अर्थात सबको छोड़ना पड़ता है, तुमको लाठी भी छोड़ो। तो आप सबको आज एक टॉपिक दे रहे हैं चिंतन करने के लिए, लाठी भी छोड़ो, अर्थात क्या? ये भक्ति मार्ग की कहावत है, बाबा ने कहा ये कहावत है। दो कहावतें आई है मुरली में, एक तो ये, और दूसरी कहावत आई है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये दो टॉपिक है चिंतन के, एक लाठी भी छोड़ो अर्थात क्या छोड़ो, बाबा ने कहा जब मेरा बनते हो तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, किसी को भी याद नहीं करो। वो सन्यासी भी सिखाते सब छोड़ो, पर बाप सिखाते शरीर को भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ, शरीर को भी छोड़ो, शरीर को याद ही नहीं करना है। एक दूसरा चिंतन, तीसरा चिंतन का विषय है शरीर को कैसे भूले, क्या किया जाए अरविंद भाई शरीर को भूलने के लिए? तो स्ट्रांग और पावरफुल पॉइंट बताओ जिससे शरीर याद ही ना आए। नशा चाहिए तो शरीर भूलता है, नशे का डोज बढ़ाओ, बार बार पीते रहो, और शरीर को कैसे भूला जाए? शरीर तो दिन रात खींचते रहता है, नीचे पकड़ के रखता है बिल्कुल। थोड़ा सा दर्द क्या हुआ, उंगली में दर्द हुआ है पर पूरे शरीर में महसूस होता है, इतना सा दर्द, यहां इतनी सी सर्दी खांसी हो गई तो हालत ऐसी खराब हो जाती है, पता नहीं जैसे क्या हो गया है, जैसे इस दुनिया में सबसे अधिक बीमार मैं ही हूं मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, जरा सा बुखार, जरा सी चोट, जरा सी असुविधा, सारे कंप्लेंट चालू हो जाती है कि हमारा कोई ध्यान नहीं रखता, हमारा कुछ ऐसा, हमारा वैसा, हमारा वैसा। शरीर हम बाकी सब चीजें ठीक, पर इसके साथ में बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल इसको सब कुछ ठीक ठाक मिलना चाहिए, भोजन विजन मिलना चाहिए, सब कुछ एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, तो फिर बाकी वो सब ठीक है। अगर ये ठीक नहीं तो बाकी भी हम शरीर को कैसे भूले, ये एक टॉपिक है, तो इस पर भी चिंतन करना है आज, शरीर को कैसे भूला जाए। क्या भूल, पहले तो ये प्रश्न है भूलना संभव है कि असंभव यहां से चालू करो, असंभव है, और फिर सोचो कि हाँ संभव हो सकता है क्या, शायद हो सकता है वो कह रहा है, तो चलो फिर सोचना चालू करो, शुरुआत करो। ए मैथमेटिक्स में होता है ए इक्वल टू बी, ये तुमको प्रूव करना है, तो कहां से चालू करते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां से चालू करते हैं वो लोग उत्तर, और फिर धीरे धीरे पहुंचते हैं, अरे नहीं 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 हम तो गलत है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, फिर आता है वो, तो ये भी ऐसा ही है। और तो ये कुछ टॉपिक्स है आज की मुरली से। तो यहां हमने सुना सबसे पहली बात, ये सौदा कहां का है? दिल का। नॉट एवरी वन हु कमेथ लॉर्ड लॉर्ड, खाली बोलने बोलने से कुछ नहीं होगा, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, मेरा जो स्वर्गीय पिता है, मेरा जो हेवनली फादर है, मेरा जो परम पिता है, वो जो कहता है वो तुमको करना पड़ेगा, तभी तुम स्वर्ग के राज में आ सकते हो। नहीं तो स्वर्ग के बस ख्वाब देखते रहना, आओगे नहीं। एक तो ये बात, और दूसरी बात बताई कि जो फॉलो करते हैं वो किसके जैसे हैं, जो मानते हैं बातें और करते हैं, उन्होंने अपना घर उस व्यक्ति की तरह है जो चट्टान पर बनाया है। तो अपने जीवन को दुर्ग बना देना है, एक अपने आप को, अपने हृदय को शक्तिशाली बना के रखना है, नहीं तो इसमें आक्रमण होते रहेंगे, वार इधर उधर से बाण आते रहेंगे, और कभी दुखी, कभी उदास, कभी मूड ऑफ, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी रूठना, कभी रूसना, कभी आना, कभी नहीं आना, सब कुछ चालू रहेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव में आना, कुछ ना कुछ होते रहेगा, और अंदर के जगत में हलचल है, अस्थिरता है, बहुत हलचल चल रही है, ऐसी अवस्था ना हो। और निगेटिव थिंकिंग और निगेटिव शब्द निकलते रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति को आदत होती है, कोई कुछ भी कहता तो वो कहता था इससे भी बुरा हो सकता था, तकिया कलाम, मतलब कुछ भी कोई बोल दे, वो एक कहता था, एक ही शब्द कहता था, ये तो कुछ नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था। तो उसका मित्र एक बार उससे कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में यह दिखा कि मैं मर गया और मर के मैं दोजक में चला गया, और वहां पर मैं इतनी मुझे पीड़ाएं मिल रही है। तो वो मित्र, तो उसकी तो आदत होती है, वो कहता है इससे भी बुरा हो सकता है, और कहता है इससे भी बुरा अब क्या हो सकता है, वो कहते हैं अगर ये स्वप्न सच हो जाए तो इससे भी बुरा हो सकता है, ये तो स्वप्न था ना, स्वप्न सच हो जाए तो इससे भी बुरा हो सकता था, ये तो कुछ भी नहीं है, तो जो हो रहा है उससे भी बुरा हो सकता है, ये भी याद रखना है, जो हां हम है उससे भी बुरा हो सकता है, और बुरी अवस्था में लोग हैं, तो चट्टान बना देना है ताकि संसार की बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके अपना, और ज्ञान का निरंतर अंदर अंदर चिंतन सिमरन एकांत में। याद का चार्ट बनाना है, बढ़ाना है, चिंतन का भी एक चार्ट होता है, यह सुना है आपने, चिंतन का चार्ट, याद का चार्ट तो सबने सुना है, एक दूसरा चार्ट होता है, चिंतन का चार्ट कितना घंटा रहा, एक घंटा, आधा घंटा कि 15 मिनट, चिंतन का, पढ़ने का नहीं कह रहे, पढ़ने का नहीं, सुनने का नहीं, चिंतन का चार्ट, विचार सागर मंथन का चार्ट, मंथन का चार्ट कितना रहा, क्योंकि मंथन का चार्ट 8 घंटा रहेगा तब याद का चार्ट भी नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा याद के लिए डबल डबल ट्रिपल चिंतन चाहिए, तब कहीं चिंतन ज्यादा याद रहेगी, 2 घंटा चिंतन तो 1 घंटा याद, ऐसा समझ लो मिनिमम। वैसे तो जितना ज्यादा अच्छा चिंतन होगा उतना ज्यादा अच्छा योग होगे, याद होगा, याद ही नहीं, चिंतन ही नहीं और याद कर रहे हैं तो कहां से याद होगी। ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे निरंतर, जो वो सुना रहा है वो निरंतर बुद्धि में गूंज होती रहे, उसकी आवाज आती रहे तो होगा। ये जो बर्तन है ना सोने का, छलकता रहे शेरनी के दूध से, या ये जो बर्तन है क्या होता रहे, छलकता रहे शेरनी के दूध से, इतना उसमें भर जाए दूध पानी सब आ जाए उसमें। हाँ, तो ये एक बात, और लास्ट बात उसने कही कि ये जो सब बोल रहा था लोगों को आश्चर्य लगा। आश्चर्य क्यों लगा, क्योंकि वो एक अधिकार से बोल रहा था, अथॉरिटी से बोल रहा था, इसलिए लोग उसको अनसुना नहीं कर पाए, अछूते नहीं रह पाए, क्योंकि उसके वाणी में शब्दों में एक पावर थी। इसके लिए लास्ट लाइन है, फॉर ही टॉट देम एज वन हैविंग अथॉरिटी एंड नॉट एज द स्क्राइब्स। तो आज का ये अंतिम एपिसोड था, आज इसको हम यहीं पूरा करते हैं। इसको हमने चालू किया था 25 दिसंबर को क्रिसमस में, और फिर बीच बीच में बहुत कुछ और हो गया, इसके लिए इतना लंबा चला। तो टोटल ये 16 एपिसोड थे, और उसमें 111 श्लोक, मैथ्यू का चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। अच्छा, ओम शांति। इसी से शुरुआत की थी, इसी से अंत करेंगे।
जिंगल बेल्स बज रहे हैं, साल खत्म हो रहा है, पर उससे पहले 25 दिसंबर क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस ट्री लाएंगे, उसे सजाएंगे, ऊंची डाली पर तारा लगाएंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, सैंटा याद करेंगे, तोहफे लाएंगे, हाथ मिलाएंगे। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस प्यार का उत्सव है, जादू कर देता है, मन को छू लेता है, प्यार से भर देता है। जिंगल बेल्स बज रहे हैं, साल खत्म हो रहा है, और इससे पहले 25 दिसंबर क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है।